Siddhi Vyah Om Namah Siddhi Vyah Om Namah Siddhi Vyah Om Shuddhatmane Namah Namo Arihantanam Namo Siddhanam Namo Ayariyanam Namo Vachayanam Namo Loe Savasahunam Antai Macharahiya Jai Jaramarananta Poradha Samsaralayatamaham Jena Chinnajinam Vande. यह श्री वीरसेन आचार्य रचित जयधवला टीका है, जो कषाय पाहुर तथा चुन्नी सूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है, जिनके कर्ता है गुणधर भट्टारक तथा यति ऋषभ आचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की है। तृतीय पुस्तक जो तृतीय अर्थाधिकार स्थिति विभक्ति नामक, उसमें अभी हम पृष्ठ संख्या 91 पर आ गए, 91। यहाँ अंतरानुगम चल रहा है, अंतरानुगम, उत्कृष्ट अंतरानुगम हमने देख लिया था, अब जघन्य अंतरानुगम का प्रकरण है, और वो भी नाना जीवों की अपेक्षा बात चल रही है। नाना जीवों की अपेक्षा जब हम देखते हैं, ओघ की अपेक्षा मोनी की जघन्य स्थिति विभक्ति वाले जीवों का जघन्य अंतरकाल, यानी कोई जघन्य स्थिति वाला था फिर दूसरे समय में और या अन्य समय में नहीं था फिर वापस आया, तो उसको हम अंतर कहेंगे, नाना जीव। तो ऐसे हो सकता है कि एक समय के लिए कोई एक या अनेक जीव उसमें है अंतिम समय में क्षपक के, फिर उसके पश्चात वाले समय में कोई नहीं है और फिर दोबारा उसमें कोई आ गया, तो नाना जीवों की अपेक्षा जघन्य अंतरकाल एक समय होता है, जघन्य स्थिति का जघन्य अंतरकाल। और उत्कृष्ट अंतरकाल का जो क्षपक श्रेणी का अंतर है, तो वो हमने 6 महीने देख लिया था, ये ओ की अपेक्षा देखी थी हमने। और अजघन्य का अंतर नहीं होगा, हमेशा ही मोह की स्थिति वाले अन्य जीव पाए जाएंगे। जो ये बात घटित होती है, ऐसे और कहाँ कहाँ एक समय का अंतर घटित हो सकता है जघन्य में और उत्कृष्ट 6 महीना, यही बात कहाँ कहाँ घटित होती है, तो हमने देखा था मनुष्य मनुष्य पर्याप्त है, मनुष्य नहीं को नहीं लिया यहाँ पर, हाँ, क्योंकि मनुष्य ने श्री वेद सहित चढ़ने वालों का उत्कृष्ट अंतर वर्ष पृथक ऐसा हाँ हो जाता है, हाँ, इसलिए मनुष्य और मनुष्य पर्याप्त को ही लिया, पंचेंद्रिय पंचेंद्रिय पर्याप्त को लिया, त्रस त्रस पर्याप्त को लिया, पांचों मनोयोगी पांचों वचन योगी काय योगी औदारिक काय योगी को लिया, लोभ कषायी को लिया, फिर अविनिबोधि ज्ञानी श्रुत ज्ञानी अवधि ज्ञानी उनको भी लिया, संयतों को लिया, सामायिक और छेदोपस्थापना संयत में भी जघन्य स्थिति वालों को लिया, जो क्षपक अनिवृत्ति के अंतिम समय में होगा। यही बात चक्षुदर्शनी अचक्षुदर्शनी शुक्ल लेशा वाले, क्योंकि उनमें एक क्षपक सूक्ष्म सांप्राय जहां घटित होता है ऐसी कुछ मार्गणाएं हैं, और जहां एक समय घटित होता है ऐसी कुछ मार्गणाएं हैं, एक समय जघन्य अंतर और उत्कृष्ट 6 महीना, भव्य समय दृष्टि, क्षायिक समय दृष्टियों में भी ऐसा ही, शायिक सम्यक दृष्टि में जघन्य वहीं पर होगा क्षपक सूक्ष्म सांप्राय में, अब हम आदेश की अपेक्षा बात देख रहे थे कि नारकियों में हमने देखा था जघन्य और अजघन्य स्थिति विभक्ति वाले जीवों का अंतरकाल उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट के समान बताया था, तो कैसा है जघन्य का कितना होगा, जघन्य अंतरकाल एक समय और उत्कृष्ट अंतरकाल, जैसे उत्कृष्ट जैसे देखा था अंगुल के असंख्यात विभाग। हमने ओघ में भी उत्कृष्ट का अंतरकाल कितना देखा था, अंगुल का असंख्यात विभाग, परंतु जघन्य का अंतरकाल 6 महीना है उत्कृष्ट। पर यहां मार्गणाओं में बता रहे, अभी नारकियों में जघन्य का अंतरकाल कितना है, उत्कृष्ट अंतरकाल। जघन्य स्थिति विभक्ति का उत्कृष्ट अंतर पड़े तो कितना होगा, तो हमने देखा था वो भी अंगुल का असंख्यात अभाव है। और ऐसी बात और कहां कहां घटित होती है, सातों पृथ्वियों के नारकियों में, ये कल देखी हुई बात हम रिपीट कर रहे हैं। सभी पंचेंद्रिय तिर्यंचों में, सामान्य देव में, भवनवासी से लेकर सर्वार सिद्धि तक के देवों में, जब मार्गणाओं में हम जघन्य देखते तो उन उन मार्गणा की अपना अपना जघन्य का प्रमाण अलग अलग होगा, परंतु ये कथन उत्कृष्ट अंतर वाला वो उसमें समान पाया जाएगा। सभी विकलेंद्रिय, पंचेंद्रिय अपर्याप्त, त्रस अपर्याप्त, हमने देखा था इनमें जघन्य स्थिति विभक्ति वाले कब होते हैं, एक इंद्रियों में से करके आए हुए जी। हाँ, पृथ्वी काय आदि 4, स्थावर काय, बादर पर्याप्त, बादर वनस्पति प्रत्येक शरीर पर्याप्त, वैकृत काय योगी, विभंग ज्ञानी, ये हमने कल लिस्ट पढ़ी थी। हाँ, तिर्यंचों में भी हमने देखी थी कि तिर्यंचों की क्या विशेषता थी, जघन्य वाले भी हमेशा हो गए, अजघन्य वाले भी हमेशा हो गए, उनमें अंतर नहीं होगा। तो तिर्यंच इन जनरल जब कहते हैं तो एकेंद्रियों की अपेक्षा जघन्य स्थिति का अंतर नहीं होता, क्योंकि तिर्यंचों में जघन्य स्थिति एकेंद्रियों के ही हो सकती है। मनुष्यों में ही ऐसे है कि वो दो क्षपक में वहां पॉसिबल है, तिर्यंचों में तो एकेंद्रियों में जघन्य होती है। और ऐसी कहां कहां होती है कि एकेंद्रीय जहां मैक्सिमम है वहां भी ये बातें घटित होती है, उसकी भी हमने कल बहुत विस्तार से चर्चा की थी। ये जो सूक्ष्म तो सभी लेना पर्याप्त पर्याप्त, और बादर पृथ्वी का एक अपर्याप्तों को लेना परंतु पर्याप्तों को नहीं लेना। अब यहाँ हम नीचे से दूसरा पैराग्राफ जो 161 नंबर का है उसको पढ़ेंगे, अभी यहाँ से शुरू करते हैं। मनुष्यनियों में, वो जरा करेक्शन करना, वो वेलांटी श्य को लिया है, इकार नी को लगाना, न को लगाना, मनुष्य नहीं करना उसको। मनुष्यनियों में हमने उसको छोड़ा था ना, मनुष्य पर्याप्तों को ओह के समान लिया था, 6 महीने का उत्कृष्ट अंतर देखा था जघन्य का। अब मनुष्यनियों में मुनि की जघन्य स्थिति विभक्ति वाले जीवों का जघन्य अंतरकाल एक समय, ये जघन्य एक समय तो घटित होगा, परंतु उत्कृष्ट अंतरकाल वर्ष पृथक्त्व है। क्योंकि जब हम मनुष्यनी कहते हैं तो भाव वेद की अपेक्षा आती है उसमें, और स्त्री वेद के सहित श्रेणी चढ़ने वाले, क्षपक श्रेणी चढ़ने वाले, पुरुष वेद के सहित चढ़ने वाले तो 6-6 महीने का उसमें अंतर है, तो स्त्री वेद वाले चढ़ेंगे तो उसमें वर्ष पृथक्त्व का अंतर हो जाता है। अकेले पुरुष वेद के सहित वर्ष का अंतर होता है, एक वर्ष का। हाँ, अकेले पुरुष वेद के से, हाँ साधिक एक वर्ष का है, आगे वाला तो आपने आगे पढ़ लिया इसलिए कह सकते हैं। अच्छा, मैंने बोले इतने कैसे आप कह सकते हो। हाँ, अच्छी बात है। मुझे तो पहले हमने कभी पढ़ा था उसकी याद है, अकेला पुरुष वेद का अंतर देखेंगे क्षपक शनि चढ़ने वाले का तो वर्ष से ज्यादा, शादी क्योंकि 6 महीने 8 समय होते ना, इसलिए वो शादिक में ले लिया। और अकेले स्त्री वेद के सहित वर्ष पृथक, नपुसक वेद में भी ऐसा ही, परंतु तीनों वेद की अपेक्षा अगर लेते हैं तो 6 महीने, तीनों वेद में से कोई ना कोई तो चढ़ेगा, तो 6 महीने का अंतर होता है। यानी वेद की अपेक्षा न मत लो तो 6 महीने का अंतर है। एक एक सिंगल अलग अलग अगर करेंगे तो उसमें ही अलग अलग अंतर होता है। तथा अजगण्य स्थिति विभक्ति वाले जीवों का अंतरकाल नहीं है, क्योंकि मनुष्यनी जीव हमेशा ही पाए जाएंगे पहले गुणस्थान से। ये श्रेणी वाले ही कभी कभी होंगे, बाकी तो हमेशा होगी कि नहीं, तो उनमें तो अजगण्य स्थिति तो हमेशा ही पाई जाएगी। मोहिनी की स्थिति तो है ही है सब में, जो जगण्य नहीं वो अजगण्य। इसी प्रकार मनपर्य ज्ञानी जीवों के जानना चाहिए, यानी मनपर्य ज्ञान के साथ क्षपक श्रेणी चढ़ने वाले जीवों में वर्ष पृथक्त्व का अंतर पड़ेगा। कल हमने अवधि ज्ञानी जीवों में देखा था, हाँ, वर्ष पृथक्त्व। अवधि दर्शन वाले जीवों के अवधि ज्ञान वाले जीवों के समान अंतरकाल है। यही है जो हम इसी यानी उसके बाजू वाले बगल वाले पेज में उसी लाइन में वहां नीचे है अंतरकाल वर्ष पृथक्त्व। देखो जहां हमने ओग की बात देखी थी 158 नंबर में, उसमें लास्ट में बताया लब्धि अपर्याप्त मनुष्यों में इनके उत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाले जीवों के समान अंतरकाल है। लब्धि अपर्याप्त मनुष्यों में उत्कृष्ट किसके होती है, तो पंचेंद्रिय में से आया है उत्कृष्ट स्थिति बांधकर, और पहले समय में होगा। अब लब्धि अपर्याप्तों में जगन्य कब होगी, एकेंद्रिय में से जो हाँ अंत में नहीं, हाँ हमने देखा पहले दो समय में विग्रह विग्रह में होता है, तो उसका अंतरकाल उत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वालों जीवों के समान ने अंगुल का असंख्यात भाग। उत्कृष्ट अंतर की बात है, उत्कृष्ट उत्कृष्ट करना उसको, हाँ एक मिनट है, क्या कहते हैं आप, क्या कहते अरविंद भाई, मनुष्य लब्धि अपर्याप्त कल देखा था ना हमने उत्कृष्ट अंतर। मार्गणा का अंतर भले पल्ले का असंख्यात भाग है, परंतु उत्कृष्ट स्थिति निकालना 88 पेज में 156 नंबर का। अनुत्कृष्ट स्थिति वालों में अगर अंतर उत्कृष्ट अंतर अनुत्कृष्ट जो मार्गणा का अंतर है, और उत्कृष्ट वाले अंगुल का असंख्यात भाग, क्योंकि उत्कृष्ट वाले आएंगे कहां से, तो पंचेंद्रिय में से करके आएंगे, और उनमें इतना अंतर पड़ता है, इसलिए यहां भी ये अंतर घटित होगा। वैकृत मिश्र कायोगी जीवों में इनके उत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाले जीवों के समान अंतरकाल है। वैकृत मिश्र में हमने देखा था कल, वैकृत मिश्र में उत्कृष्ट कब होता है, मार्गणा का अंतर कितना है उत्कृष्ट 12, परंतु यहाँ जघन्य की बात चल रही है। उत्कृष्ट का उतना ही है क्या, नहीं वो देखना है। ओग के समान ने वही अंगुल का संख्यात्व भागी होगा, क्योंकि हमने देखा था मनुष्य 3 इंच बांध कर उत्कृष्ट स्थिति बांध कर नरक में जाने वाले जीवों को यहाँ लेना है, उनकी मुख्यता से लेना है। और वैकृत मिश्र में जब जघन्य कहते हैं, याद है किसको लिया था, सर्वार सिद्धि वाले, फिर क्षायिक और दो बार उपशम, और वैकृत मिश्र के अंतिम समय में देखा था हमने। हाँ ना, वैकृक मिश्र में भी वैसा ही, क्योंकि उत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाले के समान हमने अभी देखा ना पीछे, वैकृक मिश्र का देखना है तो वो देख लो 88 पेज पर नीचे से तीसरी लाइन, वहां लिखा है ओग के समान, और ओग का अंतर कितना देखा हमने उत्कृष्ट स्थिति का, अंगुल का असंख्यात भाग। फिर आते हैं 91 पेज पर अपन, नीचे से चौथी लाइन, तथा आहारक कायोगी, आहारक मिश्र कायोगी जीवों में इनके उत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाले जीवों के समान अंतरकाल है। आहारक कायोग में उसका उत्कृष्ट ओ के समान है, फिर भी उत्कृष्ट कब होगा, उसमें प्रवेश करने के पहले समय में। वो उत्कृष्ट कितना है वो बात अलग मार्गना में अलग अलग होगी, यहाँ तो अंत कोड़ाकोड़ी सागर ही होगी, परंतु उसमें से भी उत्कृष्ट की बात चल रही है, क्योंकि अलग अलग जीवों की अलग अलग स्थिति विभक्ति पाई जाएगी। अभी हमने हम सब जगह अंगुल का असंख्यात भाग देख रहे हैं ना, ओग के समान। देखो पेज नंबर 89 पर देखना, पहली लाइन में क्या लिखा है, 89 में पहली लाइन क्या है, ओग के समान। ओग में क्या पढ़ा था, हाँ अंगुल का असंख्यात भाग। अब आगे बढ़ते हम स्त्री वेदी, पहले हमने देखा था तो मनुष्य नहीं देखा था, तो मनुष्य नहीं में क्षपक सूक्ष्म सांप्राय पाया जाता है, अब स्त्री वेदी की बात चल रही है। स्त्री वेदी में जघन्य कब होता है, हाँ स्त्री वेद के उदय का अंतिम समय क्षपक श्रेणी में, बराबर है। एकेंद्रियों में होगा कि नहीं होगा, बिन वो वहां स्त्री वेद नहीं होता, हाँ फिर भी नपुसक वेद का जघन्य वही पर क्षपक श्रेणी में ही होगा। हाँ तो यहाँ स्त्री वेदी और नपुसक वेदी जीवों में जघन्य स्थिति विभक्ति वाले जीवों का जघन्य अंतरकाल एक समय और उत्कृष्ट अंतरकाल वर्ष पृथक्त्व है, क्योंकि अभी अभी हमने देखा था स्त्री वेद सहित क्षपक श्रेणी चढ़ने वालों का अंतर जो है वर्ष पृथक्त्व, वैसे ही नपुसक वेद सहित, और ये जीव मनुष्य ही हो गए स्त्रीवेदी कहा, परंतु यहां अपेक्षा तो मनुष्यों की अपेक्षा लगती है। पुरुषवेदी जीवों में जघन्य स्थिति विभक्ति वाले जीवों का जघन्य अंतरकाल एक समय, ये पुरुषवेद का अंतिम समय, पुरुषवेद सहित श्रेणी चढ़ने वालों का अंतिम समय। उस समय कितनी स्थिति होती है, कितनी विभक्तियां पाई जाती है, मैं दूसरा प्रश्न पूछ रही हूं, बोलो। पांच प्रकृतियां पाई जाती हैं, हाँ पांच प्रकृतियां एक समय के लिए, फिर पुरुष वेद का उदय है, बाद में अपगत वेदी होने पर पांच प्रकृतियां देखी थी, अच्छा याद रखा, पुरुष वेद और चार कषाय। अपगत वेद होने पर भी पुरुष वेद वो जो नया बांधा हुआ वो रहता है, अभी उदय मिट गया है पर सत्ता में है, सत्ता में है, फिर पांच में से चार हो जाते। हाँ जब उदय है तब हम विशिष्ट उदय का नाम पुरुष वेदी कहेंगे, स्त्री वेदी कहेंगे, नपुसक वेदी कहेंगे, परंतु उनकी सत्ता में अभी है ना, जब हमने नपुसक वेदी जीव कहा था या स्त्री वेदी कहा था, कब तक, जब तक स्त्री वेद या नपुसक वेद का उदय है, उनका उदय मिटने पर पुरुष वेद तो है ना सत्ता में। हाँ उदय है तो वेद कहें, सत्ता में है और उदय नहीं है तो हम अपगत वेदी कहें। हाँ उपशम श्रेणी में क्या होता है, उपशमित है, वहां तो सभी वेद पड़े हैं, परंतु उपशमित है, सत्ता में है, और एक क्षपक श्रेणी में एक एक का क्षय होते होते पुरुष वेद का उदय मिट गया है परंतु भी दो समय कम दो आवली तक वो है सत्ता में। हाँ, क्योंकि वेद का उदय मिट गया तो अपगत वेदी ही कहेंगे, वेद उदय नहीं है। हाँ, हमेशा उदय की ही बात होती है। अभी जो हम स्त्री वेदी कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं? स्त्री वेद का उदय चल रहा है, सत्ता में उसके नपुंसक वेद और पुरुष वेद है। अंतिम समय की बात नहीं, तभी तो स्त्री वेदी का अंतिम समय है, तब वो पहले ही नपुंसक वेद का क्षय कर देता है, उसकी बात नहीं है। अन्य जब हम पुरुष वेदी जीव कहेंगे, स्त्री वेदी कहेंगे, तो सत्ता में तो तीनों है ना, उसके अन्य दो भी सत्ता में है। एक का उदय है परंतु अन्य वेद सत्ता में पड़े हैं। नहीं नहीं वो प्रश्न नहीं उनका। अपगत वेद उदय मिटने पर अपगत वेद कहेंगे, उस समय सत्ता में हो या न हो वो बात नहीं है। क्योंकि जब वेद की सत्ता नष्ट हो जाती है, पुरुष वेद का क्षय हो जाता है पूरे पूरा, और चार प्रकृतियां रह जाती है, तब भी उसको अपगत वेदी ही कहेंगे। ऊपर से भी पूरा मोह नष्ट हुआ तो भी अपगत वेदी ही कहेंगे उसको। तो वेद वाला कब कहेंगे? जब तक उदय है तब तक। अभी हम आते हैं यहाँ 92 पृष्ठ पर। यहाँ पुरुष वेदी जीवों की बात चल रही है। तो पुरुष वेदी जीवों में जघन्य स्थिति विभक्ति वाले जीवों का जघन्य अंतरकाल एक समय है। यानी वो जघन्य स्थिति विभक्ति कब होगी? जब पांच वाला हो गया है। वो पुरुष वेदी कहा ना, पुरुष वेद का उदय है, पांच की सत्ता है, उसका अंतिम समय, पुरुष वेद के उदय का अंतिम समय। तो कोई जीव पुरुष वेद से ही क्षपक श्रेणी मान रहा है और पुरुष वेद के अंतिम समय में आया है, दूसरे समय में कोई भी जीव नहीं है जघन्य वाला, और फिर बाद में और एक कोई जीव उस पोजीशन पर आ गया, तो हम कहेंगे अंतर एक समय का हुआ। और अधिक से अधिक अंतर पड़े तो उत्कृष्ट अंतरकाल साधिक एक वर्ष है। तथा तीनों ही वेद वाले जीवों में अजघन्य स्थिति विभक्ति वाले जीवों का अंतरकाल नहीं है। इसका अर्थ क्या है? तीनों ही वेद वाले जीव इस विश्व में हमेशा ही पाए जाएंगे, और अंतिम समय छोड़कर बाकी सब मोह की विभक्ति वाले अजघन्य को ही कहेंगे उसको हम। पहले गुणस्थान से लेकर अपने अपने वेद के उदय के एक समय पूर्व तक सभी अजघन्य स्थिति वाले कहेंगे, वो तो हमेशा ही पाए जाएंगे। अपगत वेदियों में, अभी अपगत वेदियों की बात की, अपगत वेदियों में मोहनीय की जघन्य स्थिति विभक्ति वाले जीवों का ये कब होगा? अपगत वेदी में जघन्य स्थिति विभक्ति सूक्ष्म सांप्राय के अंतिम समय, वो भी अपगत वेदी है ना, जब एक स्थिति बाकी है। लोभ नाम की जो सूक्ष्म लोभ का उदय है, अंतिम समय का एक निषेक है, तब उसको जघन्य स्थिति कहेंगे। तो उनका जघन्य अंतरकाल एक समय, यानी कोई जीव वहां पर है सूक्ष्म सांप्राय के अंतिम समय में, दूसरे समय में कोई जीव नहीं है, फिर तीसरे समय में कोई जीव अंतिम वो सूक्ष्म सांप्राय का अंतिम समय में आ गया, तो जघन्य अंतरकाल एक समय का होगा। हाँ, और उत्कृष्ट अंतरकाल छह महीना, जो क्षपक श्रेणी का अंतर है, क्योंकि किसी भी वेद के सहित चढ़े अपगत वेदी होने पर तो सब अपगत वेदी समान ही हो गए ना, तो क्षपक श्रेणी का जो अंतर है वही छह महीने का अंतर का है। अपगत वेदियों में जघन्य स्थिति वालों का होगा उत्कृष्ट अंतर। तथा इनके किनके अपगत वेदियों में अजघन्य का उतना ही लेंगे, इनके अजघन्य स्थिति विभक्ति अपेक्षा भी इसी प्रकार कथन करना चाहिए। आप कहेंगे क्या बात है, उपशम श्रेणी वाले है ना, परंतु उसका अंतर ज्यादा है, उपशम श्रेणी वालों का अंतर ज्यादा है, और ये अपगत वेदी हुए ना। अभी जो हम सभी अजघन्य कहेंगे, जैसे हमने अभी अभी देखा पुरुष वेद के सहित चढ़ने वाला अपगत वेदी होने पर उसके पांच स्थिति है, पांच में से चार हुई, चार में से तीन हुई, तीन में से दो हुई, वो तो हम प्रकृतियां गिन रहे हैं, यहां तो स्थिति गिननी है। तो स्थिति भी घटती चली जाएगी, जब तक अंतिम एक समय नहीं प्राप्त होता तब तक की सारी अजगण्य ही कहलाएगी। अपगत वेद होने पर भी अजगण्य है, उपशम श्रेणी के सभी जो है वो अजगण्य ही होगी अपगत वेद होने पर भी। तो उसमें कितना अंतर पड़ेगा, तो छह महीने का, क्योंकि अपगत वेद कब होया जाता है, जब श्रेणी चढ़ता है, या क्षपक हो या उपशम हो। तो क्षपक श्रेणी का अंतर या उपशम श्रेणी का अंतर, कोई ना कोई, क्षपक श्रेणी तो छह महीने चढ़ेगी ही चढ़ेगा, उपशम श्रेणी में भले बड़ा अंतर हो परंतु यहां तो अंतर समाप्त हो जाता है उसका। तो अजघन्य का उत्कृष्ट अंतर कितना है, छह महीने, ये ख्याल में आया। इसी प्रकार सूक्ष्म सांप्रायिक संयत जीवों के कहना चाहिए, सूक्ष्म सांप्रायितों में जघन्य स्थिति वाले वो अंतिम समय में होते हैं, वो भी क्षपक में होते हैं। जो क्षपक का अंतर है वही सूक्ष्म सांप्राय में जघन्य स्थिति वालों का अंतर है, मिनिमम यानी कम से कम एक समय और अधिक से अधिक छह महीने। क्रोध मान माया लोभ को तो हमने ओघ के समान, ओघ के जैसा लिया था, क्रोध मान माया कषाय वाले जीवों के पुरुष वेदियों के समान कहना चाहिए। साधिक एक वर्ष, किसमें देखो, क्योंकि सभी जीव क्रोध के सहित नहीं चढ़ते हैं। क्षपक श्रेणी चढ़ने वालों में इनकी जघन्य स्थिति कब होगी, क्षपक श्रेणी में होगी। कहाँ कहाँ होगी, क्रोध उदय का अंतिम समय, मान उदय का अंतिम समय, माया उदय का अंतिम समय। परंतु जो लोभ के सहित ही चढ़ रहा है उसका वो तो जघन्य वाला तो नहीं घटित होगा, उसका जघन्य वाला कब होगा, क्रोध उदय सहित चढ़ने वाले के क्रोध के अंतिम समय में। तो जीव क्रोध के उदय सहित चढ़ सकता है, मान के या माया के या लोभ के, लोभ के उदय सहित चढ़ेगा तो भी, या अन्य किसी भी कषाय के सहित चढ़ेगा तो लोभ में कब घटित होता है, सूक्ष्म सांप्राय के अंतिम समय में। किसी भी कषाय के सहित चढ़ेगा तो अंत में लोभ का उदय तो होगा ही होगा, क्योंकि क्रोध सही चढ़ने वाले के पहले क्रोध के परमाणु मान रूप, मान के माया रूप, माया के लोभ रूप हो जाएंगे। मान सही चढ़ने वाले के भी माया और फिर अंत में लोभ रूप हो जाएंगे। माया के सही चढ़ने वालों के लोभ रूप हो जाएंगे, और लोभ सही चढ़ने वालों के तो क्रोध आदि सब वो तो उसका संक्रमण तो होगा, अंत में लोभ के रह जाएंगे। तो लोभ में तो कोई अलग व्यवस्था नहीं है, अलग व्यवस्था नहीं है ने? वो एक समय वाला घटित होता है सूक्ष्म सांप्राय में, तो उसमें तो छह महीने का अंतर घटित होता है। जो है अंतर, जैसे छह महीने कैसे घटित हुआ वैसे इसका अंतर ही साधिक उतना है, क्योंकि हो सकता है कोई क्रोध के उदय से ही चढ़ा और बाद में एक साल तक कोई मान के साथ चढ़ा, कोई माया के साथ चढ़ा, कोई लोभ के साथ चढ़ा, क्रोध के साथ चढ़ा ही नहीं। ऐसा होगा तो कितना होता है, तो पुरुष वेदियों के समान ने साधिक एक वर्ष, क्या है उस विशिष्ट कषाय के सहित चढ़ना चाहिए। साधिक में जो कोई अधिक का प्रमाण होगा वो तो उत्कृष्ट जो होगा हो वो समय भी निश्चित है उसमें, तो साधिक का यहां बताया नहीं, परंतु वो साधिक एक वर्ष इतना ही कहा उसने। देखो लोभ के साथ चढ़ता है तो उसके जो सत्ता में क्रोध मान माया पड़े हैं वो भी संक्रमित होते हैं। उसका हमने बहुत विस्तार से देखा था, वो टेबल देखा था किस पोजीशन में क्या क्या होती है, उसके संग्रह कृष्टियां होती है, वो एक एक कषाय वो अन्य अन्य रूप संक्रमित होता है, और संक्रमित होकर उसको कहेंगे क्रोध नष्ट हो गया, मान नष्ट हो गया, क्षय हो गया, ने क्या संक्रमित हो गया, जिसको हमने अनुपूर्वी संक्रमण कहा था। क्रोध है वो सारे मान रूप, मान है माया रूप, माया है वो लोभ रूप, उदय हो या न हो उनका संक्रमण तो होगा ही। यहाँ क्रोध के उदय के साथ चढ़ने वाले का मिनिमम जघन्य स्थिति कब होती है, उसके उदय के अंतिम समय में। अब जो लोभ के उदय से ही चढ़ेगा, आठवें गुणस्थान से या सातवें के सातिशय से उसका लोभ का उदय है, उसके क्रोध का उदय कब मिटा? उसके पहले, तो तब तो उसकी अजघन्य स्थिति थी, हमको जघन्य कब होगी वो देखना है। तो क्रोध के उदय के सहित क्षपक श्रेणी चढ़ने वाला जीव नौवे अनिवृत्तिकरण गुणस्थान में, जब उसका अंतिम समय है उदय का, क्रोध के उदय का अंतिम समय, तब तक उसके क्रोध मान माया लोभ चारों बंद रहे हैं। तो हम उसको क्रोध का उदय वाला कब तक कहेंगे? जब तक उदय है तब तक। उदय मिट गया है फिर भी नए बंधे हुए क्रोध के परमाणु भी संक्रमित हो गए, जैसे हमने वेद में देखा था, परंतु उस जीव को हम क्रोध वाला जीव नहीं कहेंगे अभी। तब जितनी कोई स्थिति है मुनि की, उसको हम जघन्य स्थिति क्रोध कषाय वाले के लिए कहेंगे, क्योंकि क्रोध कषाय तो पहले गुणस्थान से है, परंतु वहां तो स्थिति ज्यादा है, उस सबको अजघन्य कहेंगे और उस पोजीशन वाले जीव को जघन्य कहेंगे। तो हर जीव एक ही कषाय के सहित श्रेणी नहीं चढ़ता है, कोई मान के उदय सहित चढ़ेगा, कोई माया के उदय सहित, कोई लोभ के उदय सहित। किसी भी कषाय के उदय सहित क्यों न चढ़े, नवे गुणस्थान के अंत तक जाके वो सारे लोभ रूप हो गए, और फिर जो बादर लोभ का उदय चलता है नवे गुणस्थान के अंत में, सत्ता में से क्रोध मान और माया नष्ट हो गए हैं और अभी वहां बादर लोभ बाकी है, उसका उदय चलता है और सत्ता में जो बादर लोभ है उसका सूक्ष्म किया जाता है, सूक्ष्म कृष्टि की जाती है। सूक्ष्म कृष्टि ने उसका अनुभाग अत्यंत मंद हो जाता है, अनंतवा भाग प्रमाण रह जाता है जो दसवें में उदय रूप होता है, उसको कहेंगे सूक्ष्म लोभ का उदय दसवें में। वो भी एक एक निषेक गलते गलते अंत समय में उसका एक निषेक बाकी रहता है, तब हम कहेंगे ये उसकी जघन्य स्थिति विभक्ति है। ख्याल आते हैं क्या? प्रश्न है कोई? हाँ, आपका प्रश्न है क्रोध के उदय से ही चढ़ने वाले के 12 संग्रह कृष्टि बनती है ना। हाँ, एक एक कषाय वाले जो परमाणु है उसमें तीन तीन संग्रह कृष्टि बनती है, कृष्टियों का समूह, उसको संग्रह कृष्टि कहते हैं। वर्गणाओं के समूह को हम स्पर्धक कहते थे, अब वर्गणा प्रतिवर्गणा एक एक अविभाग प्रतिच्छेद का डिफरेंस था, कृष्टि ऐसी होती कि उसमें अनंत गुणा का डिफरेंस होता है, ऐसे अनेक कृष्टियों का जो समूह उसको हम संग्रह कृष्टि कहते हैं। अनुभाग की अपेक्षा ये नाम दिए जाते हैं। इसकी तो विस्तार से चर्चा जब हम ये क्षपणा का चारित्रमुख की क्षपणा का प्रकरण आएगा उस पुस्तक में होगी इसकी चर्चा आगे चलकर। हमने पुरुष वेदी की समझ नहीं, अकषायी जीवों के, जब अकषायी जीव है और मोह की विभक्ति वालों की बात चल रही है, इसलिए 12वें गुणस्थान को तो लेना ही नहीं है, तो हम 11वां गुणस्थान लेंगे। अकषायी जीव, इनके उत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाले जीवों के समान अंतरकाल है, वो कितना? उपशम श्रेणी का अंतर लेना है वहां पर। अच्छा, जघन्य स्थिति विभक्ति कब पाई जाएगी? उनके अंतिम समय में, अकषायी जीवों के अंतिम समय में। वर्ष पृथक्त्व है, सॉरी, ओ के समान है, वो अनुत्कृष्ट है, अनुत्कृष्ट का वर्ष पृथक्त्व, और उत्कृष्ट जो है वो ओग के समान, बराबर है। ये नीचे क्या लिखा? ऊपर इसी प्रकार अकशा यथा कैसे है कि जीवों के जानना चाहिए, ऊपर लिखा है वो अनुत्कृष्ट के लिए लिखा है। देखो 157 नंबर में क्या लिखा, अथवा कह के उन्होंने दूसरी बात कही, अथवा कहकर क्या देखा था उत्कृष्ट अंतरकाल वर्ष पृथक्त्व है। और ऊपर जो लिखा था तीसरी लाइन में 89 पृष्ठ पर, इसी प्रकार अकशा यथा क्या सही जीवों के जानना चाहिए, दो मत दिए उन्होंने। विशेषार्थ में दिया होगा ना उसका, अंगुल के असंख्यात विभाग कहा है 90 पृष्ठ में। नीचे से देखो, नीचे से छठी लाइन से हम कहेंगे, कुछ आचार्यों का यह मत भी रहा है कि 90 पेज नीचे से, ऊपर का पैराग्राफ है ना उत्कृष्ट अंतरानुगम, उसमें नीचे से छठी लाइन क्या लिखा है, सभी उपशम श्रेणी वालों के मौनि की उत्कृष्ट स्थिति नहीं होती। उत्कृष्ट स्थिति की अपेक्षा अंतर बताना था ना, वहां पर बहुत कम जीवों के होती है, अतः उनके मतानुसार अकषाय आदि में उत्कृष्ट स्थिति का उत्कृष्ट अंतर ओग के समान अंगुल का असंख्यातवा भाग भी कहा है, भी लगाया तो भी है ने, और भी कौन सा दूसरा उपदेश कौन सा है, वर्ष पृथक्त्व जो उपशम श्रेणी का अंतर है। अब यहां जघन्य में क्या कह रहे हैं, यहां लिखा है कि उत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाले जीवों के समान अंतर है, अनुत्कृष्ट का तो वही उतना ही घटित होता है वर्ष पृथक, उसकी बात नहीं है, उत्कृष्ट और जघन्य के बारे में। हाँ, तो इसमें वर्ष पृथक्त्व भी होगा या अंगुल का संख्या तो होगा, ये पेज हम 90 पर अभी देख चुके हैं। इसी प्रकार यथाख्यात संयत जीवों के कहना चाहिए, उन्हीं का नाम यथाख्यात संयत। ओ कषाय, वो हमने कषाय मार्गणा की अपेक्षा कहा 11वें का गुणस्थान को, और संयम मार्गणा की अपेक्षा उसी को यथाख्यात संयत कहेंगे। तथा उपशम सम्यक दृष्टि, सासाधन सम्यक दृष्टि करना, और दृष्टि और सम्यक मिथ्या दृष्टि जीवों के, इनके उत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाले जीवों के समान अंतरकाल है। इनमें उत्कृष्ट तो उनके पहले समय में होता है, जैसे उपशम सम्यक्त्व का उत्कृष्ट अंतर वहां लिया था हमने 90 पृष्ठ पर ही है ना, 24 दिन रात। वैसे ऊपर सेकंड लाइन में क्या लिखा था, उत्कृष्ट उपशम सम्यक्त्व का अंतर बताया था, और वही अनुत्कृष्ट का होगा, परंतु उनका उत्कृष्ट जो है उनमें भी वो मतभेद होगा। हाँ, विशेषार्थ में लास्ट में दिया है, वैसे उपशम समय दृष्टि 157 नंबर जो पॉइंट था 89 पेज पर, उसमें तो उन्होंने पहला मत दिया था ओग के समान ने अंगुल का संख्यात्व भाग और अथवा कहके फिर उन्होंने 24 दिन रात कहा, साधिक 24 दिन रात, यानी ये दोनों ही मत है उत्कृष्ट में भी। वैसे यहां कहते उत्कृष्ट के समान यहां भी जान लेना चाहिए। अब इन सब का विशेषार्थ हम देख लेते हैं। जब एक समय के अंतर से जीव क्षपक श्रेणी पर चढ़ते हैं, पर करना वो शर दिख रहा है क्या? फिर से सासाधन सम्यक्त्व का तो मार्गणा का अंतर पल्ले का असंख्यात्व भाग था, उत्कृष्ट स्थिति के साथ उसमें आना चाहिए ना। एक मिनट, अथवा कहकर उन्होंने पल्ले का असंख्यात्व भाग कहा था, यहां जैसे 24 दिन रात कहा था उसमें पल्ले का असंख्यात्व भाग कहा था। अनुत्कृष्ट में होगा, उत्कृष्ट में भी उन्होंने लिया था। देखो 89 पृष्ठ पर, अथवा के नीचे ये सब लिस्ट दी उन्होंने। ओ कषायी, यथाख्यात, अपगत वेदी, सूक्ष्म सांप्राय, उनमें वर्ष पृथक्त्व कहा था। उपशम समय दृष्टि में साधिक 24 दिन रात कहा, और सासाधन में पल्ले के असंख्यात विभाग कहा, और क्षायिक समय दृष्टियों में 6 महीना, ये अथवा कहकर बताए थे। और उसके पहले उन्होंने क्षायिक सम्यक दृष्टि को ओग की लिस्ट में, ओग के समान लिस्ट में लिया था उन्होंने। उन पहले सांसाधन का नाम नहीं लिया था ना। हाँ 156 में है। हाँ, सांसाधन सम्यक दृष्टि और सम्यक मिथ्या दृष्टि जीवों के जानना चाहिए, ओग के समान ही है, अनुत्कृष्ट का ही वहां बताया। वो अथवा वाला है और 156 में है, वो ओग के समान वाला है। उसमें सासाधन में भी लिया और सम्यक मिथ्यात्व को भी लिया उसमें। हाँ, दोनों ही मत है उत्कृष्ट के बारे में। सॉरी, वहाँ उत्कृष्ट की बात चल रही थी, अभी हम जघन्य को उत्कृष्ट के समान बता रहे हैं, यानी उसमें भी दो मत तो होगी। अभी हम विशेषार्थ पढ़ रहे हैं। जब एक समय के अंतर से जीव क्षपक श्रेणी पर चढ़ते, वो श हुआ है, प करना उसका, तब जघन्य स्थिति का, जघन्य अंतर काल एक समय पाया जाता है। एक समय के लिए कोई भी जीव लास्ट समय में नहीं है। और जब 6 महीना के अंतर से जीव क्षपक श्रेणी पर चढ़ते हैं, तब जघन्य स्थिति का उत्कृष्ट अंतर 6 महीना पाया जाता है। ये तो आसान है ना, क्षपक श्रेणी का अंतर। ओग से अजघन्य स्थिति का अंतर नहीं है, यह तो स्पष्ट ही है। अजघन्य स्थिति वाले तो सदाकाल ही पाए जाएंगे। वहां ये विशेषार्थ के पहली लाइन में थोड़ा चेंज था, क्षपक श्रेणी पर करना श हुआ है। ये देखना है, इसको लेना। देखो हम पढ़ रहे अभी, जब एक समय के अंतर से जीव, वो तो पढ़ लिया हमने, उत्कृष्ट अंतर क्षपक श्रेणी का 6 महीना होता है। अब ओग से अजघन्य स्थिति का अंतर नहीं, यह भी स्पष्ट है। सामान्य मनुष्य आदि और जितनी मार्गणाएं गिनाई है उनमें भी इसी प्रकार अंतर समझना चाहिए, क्योंकि जहां जहां वो क्षपक श्रेणी और घटित होती है सूक्ष्म सांप्राय, उस मार्गणाएं भी ऐसा ही समझना, क्योंकि क्षपक श्रेणी में वे सब मार्गणाएं संभव है, अतः उनमें जघन्य स्थिति का अंतर ओग के समान बन जाता है, और वे मार्गणाएं निरंतर है, अतः उनमें अजघन्य स्थिति का अंतर नहीं पाया जाता। किंतु अवधि ज्ञानी जीव यदि क्षपक श्रेणी पर न चढ़े की बात है, तो वर्ष पृथक्त्व काल तक नहीं चढ़ते हैं। यानी बिना अवधि ज्ञान वाले ही चढ़ेंगे। अतः इनमें जघन्य स्थिति का उत्कृष्ट अंतर वर्ष पृथक्त्व कहा है। यहां तक तो बात आसान है, हमने पहले भी देखी थी। सामान्य नारकीय आदि कुछ ऐसी मार्गणाएं हैं जिनमें जघन्य और अजघन्य स्थिति का अंतर इनकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थिति के समान है। कितना देखा था हमने, अंगुल का असंख्यात्वा भाग। सामान्य तीन इंच आदि कुछ ऐसी मार्गणाएं हैं जिनमें जघन्य और अजघन्य स्थिति वाले जीव सर्वदा पाए जाते हैं। सीरियंचों की अपेक्षा जघन्य लेना वहां पर, क्योंकि वहां क्षपक्षेनी का कोई सवाल ही नहीं है। नारकियों में भी हमने नारकी की अपेक्षा जघन्य देखा था, तो तीरियंचों में तो सदाकाल है, इसलिए उसमें अंतर घटित नहीं होगा। अतः उनमें उनका अंतर काल संभव नहीं। मनुष्यनी, मनपरिज्ञानी, स्त्रीवेद और नपुसक वेद, इन मार्गणाओं में क्षपक श्रेणी का जघन्य अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतर वर्ष पृथक्त्व है। यानी मनुष्यनी क्षपक श्रेणी पर चढ़ने वाले, मनपरिज्ञान के साथ चढ़ने वाले, स्त्रीवेद के साथ या नपुसक वेद के साथ। अतः इनमें जघन्य स्थिति का जघन्य अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतर वर्ष पृथक्त्व कहा। यही बात अवधि दर्शन की है, जो अवधि ज्ञान की है वही अवधि दर्शन की है। पर इसमें इनमें अजघन्य स्थिति का अंतरकाल नहीं पाया जाता, क्योंकि बाकी अवधि ज्ञानी तो हमेशा ही रहेंगे। अवधि ज्ञान सहित क्षपक श्रेणी चढ़ने वाले न भी हो वर्ष पृथक्त्व तक, अवधि ज्ञानी जी तो चौथे गुणस्थान से रहेंगे, वो तो सदाकाल पाए जाएंगे ही। लब्धि अपर्याप्तक मनुष्य, वैकृत मिश्र का योगी, आहारक का योगी, इनकी जघन्य और अजघन्य स्थिति का अंतर इनकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थिति के अंतर के समान है, उसमें इसमें कोई विशेषता नहीं है। उसके बारे में दो मत थे, अभी हमने देखा था। ये आहारक का योग के बारे में दो मत थे ना। लब्धि अपर्याप्तक मनुष्यों के लिए तो हमने वो देखा था कि उत्कृष्ट का अंतर जो है वो के समान है, उत्कृष्ट अंतर का लोग, ये तीनों मार्गणाओं के लिए लिखा था। उसके बारे में कोई दो मत नहीं थे, आहार के बारे में दो मत नहीं थे, अकषाय वगैरह के बारे में दो मत थे। ये तो अंगुल का असंख्यात्वा भाग इतना ही था। क्या कहते हैं, लब्धि अपर्याप्तक मनुष्य, वैक्रेक मिश्र का योगी, आहारक का योगी, इनकी जघन्य का अंतर कितना होगा, भी एक समय से लेकर अंगुल का असंख्यात्वा भाग, और अजघन्य स्थिति का अंतर उस मार्गणा का अंतर, लब्धि अपर्याप्त मनुष्य में उत्कृष्ट अंतर पल्ले का असंख्यात्वा भाग, वैक्रेक मिश्र में 12 मुहूर्त, और आहारक का योगी में वर्ष पृथक्त्व, अनुत्कृष्ट का उत्कृष्ट अंतर, अनुत्कृष्ट या अजघन्य अभी हमको कहना, अभी अनुत्कृष्ट की बात नहीं चल रही है, अजघन्य की। पुरुष वेद में कम से कम एक समय तक और अधिक से अधिक साधिक एक वर्ष तक क्षपक श्रेणी नहीं प्राप्त होती, अतः इसमें जघन्य स्थिति का जघन्य अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतर साधिक एक वर्ष कहा है। किंतु इसमें अजघन्य स्थिति का अंतर नहीं है, क्योंकि पुरुष वेद तो हमेशा ही पाए जाएंगे, क्योंकि यह निरंतर मार्गणा है। मोह सत्कर्म वाले क्षपक अपगत वेद, एक कितना उसके पीछे अकेला अपगत वेद नहीं है, मोह सत्कर्म वाले, मोह की सत्ता वाले क्षपक अपगत वेद। सत्ता वाले कब तक कहेंगे, जब तक उस सूक्ष्म सांप्राय का अंतिम समय है, क्योंकि अकेला क्षपक अपगत वेदी कहेंगे तो 12वें गुणस्थानवर्ती भी अपगत वेदी कहलाएंगे, तेरहवें चौदहवें वाले भी अपगत वेदी कहलाएंगे। यहाँ मोह की सत्ता वालों की बात चल रही है और उसमें भी जघन्य की बात कर रहे हैं, तो जघन्य तो क्षपक में ही घटित होगा और क्षपक सूक्ष्म साम्राज्य संयम की प्राप्ति का जघन्य अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतर छह महीना है। अतः इनमें जघन्य और अजघन्य स्थिति का जघन्य अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतर छह महीना कहा, उनमें अजघन्य का भी उत्कृष्ट अंतर छह महीना का, किसमें अपगत वेदियों में अजघन्य का, क्योंकि अपगत वेदी हमेशा ही नहीं पाए जाएंगे। अपगत वेदी का हम जब अजघन्य कहते हैं तो दोनों में घटित होते हैं, परंतु क्षपक वाले भी आ गए तो उसका अंतर तो समाप्त हुआ ना, अंतर समाप्ति की बात चल रही है, इसलिए उसका भी अंतर छह महीना होता है। क्रोध मान और माया कषाय का कथन पुरुष वेद के समान है, क्योंकि इन तीन कषायों का क्षपक श्रेणी में जघन्य अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतर साधिक एक वर्ष पाया जाता है। ये नाना जीवों की अपेक्षा बात चल रही है। मोहनीय सत्कर्म वाले अकषायी और यथाख्यात संयत, ये तो ग्यारहवें गुणस्थान वाले हैं, उपशम श्रेणी में ही होते हैं। अतः इनमें जघन्य और अजघन्य स्थिति का अंतर उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थिति के समान बन जाता है। वहां भी दो मत दिए थे, अभी एक तो वर्ष पृथक्व भी बताया था, एक अंगुल का संख्या तो अभाव। इसी प्रकार उपशम सम्यक्त्व सासाधन और सम्यक मिथ्यात्व में उत्कृष्ट स्थिति के समान अंतर जानना, क्योंकि ये तीनों सांतर मार्गणाएं हैं, अतः इनके जघन्य स्थिति के अंतर में उत्कृष्ट स्थिति के अंतर से कोई विशेषता नहीं होती। इस प्रकार अंतरानुगम समाप्त हुआ। आगे वाला अनुगम बहुत अच्छा है क्या? भावानुगम की अपेक्षा सर्वत्र औदयिक भाव है, औदायिक करते वो हमेशा औदयिक चाहिए। इस प्रकार भावानुगम समाप्त हुआ, क्योंकि मोहिनी की स्थिति विभक्ति है तो वो तो औदयिक भाव है। अल्प बहुत्वानुगम दो प्रकार का है, जघन्य और उत्कृष्ट, यानी जघन्य के बारे में अल्प बहुत्व और उत्कृष्ट के बारे में अल्प बहुत्व। उनमें से उत्कृष्ट अल्प बहुत्व अनुगम का प्रकरण है, उसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकार का है, ओघ निर्देश और आदेश निर्देश। उनमें से ओघ की अपेक्षा मोहिनी की उत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाले जीव सबसे थोड़े हैं, इनसे अनुत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाले जीव अनंत गुणे हैं। यहाँ अल्प बहुत्व पहले हमने भागा भाग देखा था, उसमें कैसा कथन किया था, उत्कृष्ट वाले अनंत वे भाग है और बाकी अनंत बहुभाग प्रमाण है। फिर प्रमाण को देखा था, प्रमाण में कितना देखा था हमने, उत्कृष्ट स्थिति वाले कितने देखे थे, असंख्यात, और अनुत्कृष्ट वाले अनंत, वो प्रमाण परिमाण अनुयोग में देखा था। अब यहां अल्प बहुत्व देख रहे हैं, देखना है निकाल के। कभी तो हमने देखा था उत्कृष्ट नहीं भी होगे, ऐसा भी बन सकता है। 61 जघन्य स्थिति विभक्ति वाले हैं, वहां पर उत्कृष्ट की बात देख रहे हैं अपन, जघन्य वालों में है ना वो। अच्छा 61 पर मैं 60 में देख रही थी, यहाँ लिखा ना असंख्यात है और अनुत्कृष्ट वाले अनंत है, प्रमाण में देखा था। और फिर वो असंख्यात है, फिर भी कितने भाग प्रमाण है अगर हम देखेंगे तो अनंत वे भाग कहेंगे। देखो भागा भाग में देखो, 58 पृष्ठ पर। तीसरी लाइन भागा अनुभाग में 98 नंबर पॉइंट, तीसरी लाइन, ओग निर्देश की अपेक्षा मुनि की उत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाले जीव सब जीवों के कितने भाग है, तो अनंत वे भाग है, फिर भी उनका प्रमाण कितना है, तो असंख्यात है। अब यहाँ कहते अल्पभूतों में वो सबसे कम है, ख्याल है ना, बात तो वही की वही हो, परंतु वो हाँ किस अनुयोग की अपेक्षा से कथन है। तो यहाँ कहते कि उत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाले जीव सबसे कम है और अनुत्कृष्ट वाले अनंत गुणे हैं। अब यही सबसे कम और अनंत गुणा वाला जो है ये कथन और कहाँ कहाँ घटित होगा, अनंत गुणा कहाँ घटित होगा, जहाँ अनंत जीव पाए जाएंगे उस मार्गणा में। नारकी वगैरह में तो अनंत गुणा नहीं कहेंगे, हम असंख्यात गुणा कह सकते हैं, है ना। तो कहते इसी प्रकार सामान्य तिर्यंच, सभी एकेंद्रिय, सभी वनस्पति कायिक, सभी निगोद, काय योगी, औदारिक काय योगी, औदारिक मिश्र काय योगी, कार्मण काय योगी, नपुसक वेदी, क्रोधादि चारों कषाय वाले, मत्य ज्ञानी, श्रुता ज्ञानी, असंयत, अचक्षुदर्शनी, कृष्ण आदि तीन लेशा वाले, भव्य अभव्य, मिथ्या दृष्टि, असंगी, आहारक और अनाहारक, अनारहक हुआ अनाहारक जीवों के जानना चाहिए। यानी जहां सबसे कम है और अनंत गुणे हैं, ऐसे जहां जहां घटित होता है ऐसी मार्गणाएं बताई। अब आदेश निर्देश की अपेक्षा नारकियों में मुनि की उत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाले जीव सबसे थोड़े हैं। इनसे अनुत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाले जीव असंख्यात गुणे हैं। इसी प्रकार सातों पृथ्वियों के नारकी, सभी पंचेंद्रिय तिर्यंच, पहले तिर्यंच कहते तो अनंत घटित होता है, अभी पंचेंद्रिय तिर्यंच तो असंख्यात हो गए। सामान्य मनुष्य, मनुष्य अपर्याप्त, क्योंकि अपर्याप्तों में ही असंख्यात घटित हो गए। सामान्य देव, भवनवासियों से लेकर अपराजित स्वर्ग तक के देव, क्योंकि सर्वार्थ सिद्धि में तो संख्यात होते हैं। सभी विकलेंद्रिय, सभी पंचेंद्रिय, पृथ्वी काय आदि चार स्थावर काय, सभी त्रस, पांचों मनोयोगी, पांचों वचन योगी, वैक्रिक काय योगी, वैक्रिक मिश्र काय योगी, स्त्री वेदी, पुरुष वेदी, विभंग ज्ञानी, अभिनिबोधिक ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, अब उनके योग्य जो उत्कृष्ट होगा उसको लेना। संयता संयत, चक्षुदर्शनी, अवधि दर्शनी, पीत आदि तीन लेशा वाले, क्योंकि ये तो असंख्यात हो गए। कृष्ण आदि तीन वाले तो अनंत होते हैं, क्योंकि उसमें वो एकेंद्रिय सब आते हैं। पीत लेशा वाले कहाँ कहाँ हो गए, एकेंद्रियों में तो हो नहीं सकते, इंद्रियों की अपेक्षा पंचेंद्रियों में ही हो गए। और वो कहाँ कहाँ हो गए, देव मनुष्य और तिर्यंचों में हो गए, तो इनकी संख्या असंख्यात ही होगी। सम्यक दृष्टि, क्षायिक सम्यक दृष्टि, वेदक सम्यक दृष्टि, उपशम सम्यक दृष्टि, सासादन सम्यक दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि और संगी जीवों के जानना चाहिए। अब जहां संख्यात है ना, वो उसका कथन अभी अलग से बता रहे। मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यनियों में उत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाले जीव सबसे थोड़े हैं। इनसे अनुत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाले जीव संख्यात गुणे हैं, क्योंकि वो मार्गणा में जीव ही संख्यात है, इसलिए अल्प है और संख्यात गुणा है ऐसा घटित होता है। इसी प्रकार सर्वार्थ सिद्धि के देव, आहारक कायोगी, आहारक मिश्र कायोगी, अब जो जो संख्यात जहां जीव पाए जाते हैं ऐसे ये मार्गणाएं हैं, अपगत वेदी, अकषायी, मन पर्य ज्ञानी, संयत, यह के ऊपर अफार जरा स्पष्ट है। कहां पर? मन पर्य ज्ञानी, बराबर है, एक ऊपर रफार रह गया है, अस्पष्ट है वहां पर। मन पर्य ज्ञानी संयत, सामायिक संयत, छेदोपस्थापना संयत, परिहार विशुद्धि संयत, सूक्ष्म सांप्रायिक संयत और यथाख्यात संयत जीवों के जानना चाहिए। इस प्रकार उत्कृष्ट अल्प बहुत्वानुगम समाप्त हुआ। ये तो आसान है, केवल वो उससे अनंत गुणा है कि असंख्यात गुणा है कि संख्यात गुणा, इतना ही कहा। अब जघन्य अल्प बहुत्वानुगम का प्रकरण है, इसमें जघन्य से अजघन्य कितने गुणा ऐसा कहेंगे, उसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकार का है, ओघ निर्देश और आदेश निर्देश। उनमें से ओघ की अपेक्षा जघन्य और अजघन्य स्थिति विभक्ति वाले जीवों का अल्प बहुत्व उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाले जीवों के अल्प बहुत्व के समान है। क्या होगा? जघन्य सबसे अल्प है और अजघन्य अनंत गुणे है। इनके प्रमाण में कुछ फर्क होगा? उत्कृष्ट में तो असंख्यात को लिया था और अनंत गुणा वाला वो अनंत लिया था, और जघन्य को तो संख्यात हो गए, ओग की अपेक्षा जघन्य संख्यात हो गए, सूक्ष्म सांप्राय वाले अंतिम समय वाले जघन्य कहलाएंगे और उनकी अपेक्षा बाकी सब अनंत हो गए। कथन दोनों में समान है, फिर भी प्रमाण में अंतर है। इसी प्रकार ये कथन और कहां कहां घटित होता है कि जघन्य वालों से अजघन्य अनंत गुणे हैं, ये कहां कहां घटित होगा? काय योगियों में। अब ये ऐसी मार्गणाएं लेना ओग की अपेक्षा जहां वो सूक्ष्म सांप्राय वाला घटित होता है, औदारिक काय योगी, नपुसक वेदी, इसमें वेद का अंतिम समय लेना है, क्रोधादि चारों कषाय वाले, अचक्षुदर्शनी, भव्य और आहारक जीवों के जानना चाहिए। देखो ऊपर तो हमने बहुत बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट देखी थी, वहां तो कृष्णादि तीन लेशा वाले भी लिए थे, है ना? अब कहते आदेश निर्देश की अपेक्षा नारकियों में मुनि की जघन्य और अजघन्य स्थिति विभक्ति वाले जीवों का अल्प बहुत्व उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाले जीवों के अल्प बहुत्व के समान है, यानी वो कम है और ये असंख्यात गुणे हैं। हमने देखा था जघन्य कहाँ कहाँ होता है, पहली पृथ्वी में तो शुरू में होगा, दूसरे विग्रह में, और दूसरे से छठी नरक में तो अंत समय में, उसकी कंडीशंस भी हमने देखी थी। इसी प्रकार सातों पृथ्वियों के नारकी, एक कथन तो सब जगह वही होगा, जघन्य अल्प है और अजघन्य असंख्यात गुणे हैं। सभी कहां पर? हाँ, उनके तो संख्यात थे, वो नाना जीवों की अपेक्षा संख्यात समय घटित किए थे, नाना जीवों की अपेक्षा संख्यात था, परंतु उसमें हमने देखा था कि पहले नरक में जो हमने जघन्य स्थिति देखी थी उसमें तो असंख्यात देखे थे। निकालो प्रमाण, निकालो, अभी देखा था ना 61 कहीं पर, मन में हमें प्रश्न उठता है तो जरूर उसका देखो। अभी हमको जघन्य देखने हैं, 61 पर हमने उत्कृष्ट देखे थे, उत्कृष्ट वाले असंख्यात देखे थे, अब जघन्य देखना है हमको, हाँ 62 है ना, 108 वाला। जघन्य भी असंख्यात है, अजघन्य भी, और वो असंख्यात कहाँ घटित हो गए? पहली पृथ्वी में, और दूसरे पृथ्वी से हाँ वो कितने हैं तो संख्यात है। पहली पृथ्वी में तो असंख्यात है, कौन से? असंगी में से जघन्य स्थिति के साथ आए हुए जीव असंख्यात है, और दूसरी से छठी पृथ्वी तक जो करने वाले जीव है वो संख्यात है। हाँ, सातवीं में भी असंख्यात, क्योंकि उसका अंतर्मूर्त तक उतना ही रहता है, इसलिए असंख्यात घटित हो सकते हैं। और दूसरी से छठी तक एक समय में घटित होता है, इसलिए वहां संख्यात घटित होते हैं। उसका कारण हमने ये भी देखा था कि अभी वो जघन्य किए ना वहां पर, सम्यक तो के सहित है वो और मरकर मनुष्य में आने वाले हैं, तो वही वो संख्यात ऐसा भी देखा था। संख्यात समय भी देखे थे, जीव भी संख्यात ऐसा देखा था। अभी हम कहाँ देख रहे थे, आदेश की अपेक्षा देख रहे थे। हाँ, 94 में नीचे 167 नंबर का पॉइंट, इसी हाँ नीचे से पांचवी लाइन, इसी प्रकार सातों पृथ्वियों के नारकी सभी तिर्यंच, क्या कहा, कितने गुना कहा, असंख्यात गुना की बात चल रही है। आप कहेंगे तिर्यंचों में असंख्यात गुना कैसे है, क्योंकि हमने देखा था जगन्य वाले भी अनंत हैं और अजगन्य वाले भी अनंत हैं, फिर भी उसमें गुणाकार का फर्क असंख्यात गुणाकार डिफरेंस है। मनुष्य मनुष्य अपर्याप्त सामान्य देव, भवनवासियों से लेकर अपराजित स्वर्ग तक के देव सभी एकेंद्रिय लिखा है ना यहाँ पर, क्योंकि एकेंद्रिय जो अनंत है फिर भी उसमें जघन्य भी है और अजघन्य भी और सदाकाल है और उनकी संख्या भी अनंत अनंत होगी, इसलिए उनसे वे असंख्यात गुणे हैं। सभी विकलेंद्रिय सभी पंचेंद्रिय छहो काय वाले पांचों मनोयोगी पांचों वचन योगी औदारिक मिश्र काय योगी वैक्रिक काय योगी वैक्रिक मिश्र काय योगी कार्मण काय योगी, कार्मण काय योगी है तो अनंत जीव परंतु जघन्य से अजघन्य है वो, असंख्यात गुणे हैं। स्त्री वेदी पुरुष वेदी मत्य ज्ञानी श्रुता ज्ञानी विभंग ज्ञानी, मत्य ज्ञानी श्रुता ज्ञानी में भी अनंत है फिर भी वो असंख्यात गुणा वाले बनेंगे। आभिनिबोधि ज्ञानी श्रुत ज्ञानी अवधि ज्ञानी संयता संयत असंयत चक्षुदर्शनी अवधि दर्शनी कृष्णादि पांच लेशा वाले, ये असंख्यात गुणा वाला यहाँ घटित होता है, क्योंकि कृष्णादि तीन लेशा वालों में तो जीव है अनंत फिर भी असंख्यात गुणा घटित होता है, दोनों ही अनंत अनंत है। पीत पद्म में तो जघन्य से अजघन्य वो असंख्यात गुणे हो गए ही। शुक्ल लेशा वाले इसमें अलग से क्यों निकाला, अभव्य सम्यक दृष्टि क्षायिक सम्यक दृष्टि वेदक सम्यक दृष्टि उपशम सम्यक दृष्टि सासादन सम्यक दृष्टि सम्यक मिथ्या दृष्टि मिथ्या दृष्टि संगी असंगी और अनाहारक जीवों के जानना चाहिए। वो अनाहारक भी अनंत हो गए असंगी भी अनंत हो गए फिर भी वो जो अभी हमने एकेंद्रीय की अपेक्षा लगाई उनमें जो जघन्य होगा वो आगे बढ़ेंगे ना, ये समझ में आए इतनी बात। शुक्ल लेशा वालों का नहीं, उसमें तो जघन्य का प्रमाण अलग होगा इसलिए उसको अलग से लिया, एक्चुअली छह लेशा वाले हो गए इसमें तो फिर भी उन्होंने अलग से बताए। हाँ शुक्ल लेशा में जो जघन्य है परंतु उनसे वो असंख्यात गुणा वाला तो घटित होगा ही अजघन्य वाले, हाँ क्योंकि शुक्ल लेशा के साथ जघन्य जो हम कहते हैं भले शुक्ल लेशा वाले जीव असंख्यात है तो दसवें के अंतिम भाग में होते हैं अंतिम समय में, अभी हम आगे का पढ़ेंगे। मनुष्य पर्याप्त और मनुष्य नियम में जघन्य स्थिति विभक्ति वाले जीव सबसे थोड़े हैं, इनसे अजघन्य स्थिति विभक्ति वाले जीव संख्यात गुणे हैं, क्योंकि मनुष्य ही संख्यात होते हैं। इसी प्रकार सर्वार्थ सिद्धि के देव आहारक कायोगी आहारक मिश्र कायोगी अपगत वेदी, अकषायी, मनपरे ज्ञानी, संयत, सामायिक संयत, छेदोपस्थापना संयत, परिहार विशुद्धि संयत, सूक्ष्म सांप्रायिक संयत और यथाख्यात संयत जीवों के जानना चाहिए, वो भी संख्यात होते हैं। इस प्रकार अल्पभूतव अनुगम समाप्त हुआ। इस प्रकार 24 अनुयोग द्वार समाप्त हुए। उसमें एक अद्धा छेद नाम का एक सौ बताया, भागा भाग एक बताया, और कौन सा तीसरा? भावानुगम ना, सन्निकर्ष नहीं बताया क्या? सात नंबर, सात सात देखो, आठ नंबर पेज पर क्षेत्र स्पर्शन काल अंतर, सन्निकर्ष एक के होते हुए अनेक अन्य अल्पभूतव भुजाकार, हाँ वो बात आएगी अभी। हाँ, और नीचे जो लिखे थे ना एक्स्ट्रा वाले, अद्धा छेद, भागा भागा और भावनियोग, वो तो ले लिए उन्होंने, तो उनको लेते हुए और ऊपर के अभी तीन नहीं बताए हैं, चार नहीं बताए हैं, टोटल 27 होते हैं। भुजाकार, पद निक्षेप, वृद्धि और सन्निकर्ष ये नहीं बताए अभी, वो उसी में आ जाएंगे अभी, भुजाकार वगैरह में वृद्धि ले लेंगे। हाँ पढ़ेंगे अभी हम। अब ये भुजाकार की बात होती है, भुजाकार कब कहेंगे हम? पहले कम थे, बाद में ज्यादा होते तो भुजाकार कहते हैं। दूसरा शब्द क्या है? तीन शब्द आते हैं, अल्पतर, पहले ज्यादा है, अल्पतम ने अल्पतर, हाँ पहले ज्यादा है और बाद में कम होते हैं, यहाँ स्थिति की बात चल रही है। पहले हम विभव यानी प्रकृतियों की बात करते थे, जब 11 प्रकृति में से पांच हुआ, पांच में से चार हुआ तो अल्पतर हुआ कहते थे। अब यहाँ प्रकृति की बात नहीं, स्थिति की बात है। स्थिति घटने को हम कहेंगे अल्पतर और स्थिति बढ़ने को कहेंगे भुजाकार। ये पहले कम बनती थी और फिर ज्यादा बनेगी। हाँ परंतु हाँ उत्कृष्ट से अनुत्कृष्ट उसको कहेंगे अल्पतर, और अवस्थित ने उतनी की उतनी रहने, वो कब होगा? स्थिति कुछ विशिष्ट है और समान समान बंद हो रहा है, समान स्थिति के समान। अब देखेंगे यहाँ क्या कहते हैं। देखो भुजाकार स्थिति विभक्ति के कथन में अभी इसमें भी अनुयोग बताएंगे, समुत्कीर्तना से लेकर, समुत्कीर्तना है ना, उसका स्टेटमेंट करना पर है इतना बताना, उसको कहेंगे समुत्कीर्तना। उससे लेकर अल्पभूतव तक 13 अनुयोग द्वार है, भुजाकार के अंदर 13 अनुयोग द्वार बताएंगे। उनमें से समुत्कीर्तना अनुगम की अपेक्षा निर्देश दो प्रकार का है, ओघ निर्देश और आदेश निर्देश। उनमें से ओघ की अपेक्षा मुनि की भुजाकार, अल्पतर और अवस्थित स्थिति विभक्ति वाले जीव है, बस इतनी बात बताए। नहीं यहाँ तो जीव है कहते हैं, ने नाना जीव की बात चल रही है। एक जीव की अपेक्षा कब कहेंगे? पहले ज्यादा थी और कम की, और नाना जीवों की अपेक्षा भुजाकार कब कैसे कहेंगे? भुजाकार वाले भी है, अल्पतर वाले भी है और अवस्थित वाले भी है, फिर कौन से ज्यादा है कम है उसकी बात अलग। यहाँ तो क्या कह रहे है, इतनी बात उन्होंने बताई। इसी प्रकार सातों पृथ्वियों के नारकी, सभी तीर्यंच, सभी मनुष्य, सामान्य देव, भुवनवासियों से लेकर सहस्रार कल्प तक के देव, देखो ऐसे कुछ मार्गणाएं छोड़ी है जिनमें भुजाकार नहीं अल्पतर होगा, सभी विकलेंद्रिय, सभी पंचेंद्रिय, ये ऐसी लिए कि जिन्होंने जिनमें तीनों ही पॉसिबल है, पांचों स्थावर काय, सभी त्रस, पांचों मनोयोगी, पांचों वचन योगी, काय योगी, औदारिक काय योगी, औदारिक मिश्र काय योगी, कॉमा लगाना, वैक्रेक काय योगी, वैक्रेक मिश्र काय योगी, कार्मण काय योगी, तीनों वेद वाले, क्रोधादि चारों कषाय वाले। देखो हमने यहाँ आहारक को नहीं लिया है, आहारक में जितनी स्थिति है वो तो अल्पतर ही होती जाती है ना, वो तो एक जीव की अपेक्षा होगी वहां पर। हाँ भुजगार में हमने देखा था अन्य पर्याय में अधिक बांध कर आया है, मिश्र की आप कह रहे वैक्रिक मिश्र की बात कर रहे हैं, तो वैक्रिक मिश्र में जब कोई मनुष्य तीरंच नारकी की उत्कृष्ट स्थिति के साथ गया है उसके अल्पतर होता चला जाएगा, और असंगी में से आया होगा क्या होगा उसका, है ना। ये हम लिस्ट पढ़ रहे थे, तीनों वेद वाले, चारों कषाय वाले, मत्य ज्ञानी, श्रुता ज्ञानी, विभंग ज्ञानी, असंयत, सम्य दृष्टियों को छोड़ा, चक्षु दर्शनी, अचक्षु दर्शनी, कृष्णादि पांच लेशा वाले। हमने देखा था शुक्ल लेशा वालों के तो अंत कोड़ा कड़ी वो भी घटता बंद होता है, भव्य अभव्य मिथ्या दृष्टि, संगी असंगी, आहारक और अनाहारक जीवों के जानना चाहिए। आहार के ने वो तो योग वाले नहीं, आहारक लेना, हाँ नवकर्म के आहार वाले। अब आगे का पॉइंट, आनत कल्प से लेकर सर्वार सिद्धि तक के देवों में मोनि की अल्पतर स्थिति विभक्ति वाले जीव है, यानी वहां जन्मने वाले उनके तो लगातार बंधक कम हो रहा है, तो जितनी स्थिति है वो एक एक से घटती ही चली जाएगी, तो अल्पतर वाले है कहा। इसी प्रकार आहारक का योगी, आहारक मिश्र का योगी, अपगत वेदी, अकषायी, आभिनिबोधिक ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मनपरे ज्ञानी, संयत, सामायिक संयत, छेदोपस्थापना संयत, परिहार, वो विकी वेलांटी देना, इकार, परिहारा वशुद्धि दिखता है ना, वो परिहार विशुद्धि करना, हाँ देखो श्रेणी उतरते समय भी छठे में आए फिर भी नया बंध तो कम ही होगा, बंध किसका हो रहा है, कौन उसकी तो स्थिति तो गलती ही चली जाएगी ना, वहां तो उनकी गुण श्रेणी चल रही कि नहीं, हर समय निर्जरा तो हर समय चल रही है, उनकी स्थिति तो घटती ही चली जाएगी। ये सामान्य समय दृष्टि को भी लिया उन्होंने, शुद्धोपयोग हो न हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके तो गुणश्रेणी हर समय चल रही है। देखो ये सभी समय दृष्टियों को भी लिया, यहाँ वेदक को भी लिया, समय उपशम वाले को भी लिया, क्षायिक वाले को भी लिया, उनकी तो स्थिति गलती ही चली जाएगी और नया बंधक कम ही होगा, क्योंकि पूर्व में जो कोई बंधक था उनका तो मोहनी का जो उत्कृष्ट था पहले, अभी दर्शन मोहनी का जब तक क्षय नहीं होता तो वो तो घटती चली जाएगी, उसकी अपेक्षा अगर बात करेंगे चारित्र मोहनी का भी घटता हुआ बंद रहेगा उनका, तो जितनी स्थिति वो तो घटेगी ही, नया बंद कम है तो स्थिति जितनी है उसमें से एक एक निषेक तो गलेगा हर समय, तो इसलिए अल्पतर कहा उसमें। देखो ये सभी पूरी जो हमने लिस्ट पढ़ी है सम्यक दृष्टियों की है, उसमें संयत भी लिए, सब लिए। देखो परिहार विशुद्धि संयत, सूक्ष्म सांप्रायिक संयत, यथाख्यात संयत, वहां भले वितरागता समान है। ग्यारहवें गुणस्थान में आप कहेंगे अपगत वेदियों में उपशम श्रेणी में तो उतने के उतने स्थिति घटती चली जाती है, भले सत्ता में एक एक निषेक तो गलेगा ही, निर्जरा होने दो, निर्जरा से स्थिति कांडक जब तक होगा तभी उसकी बात है। हाँ, वो तो प्रत्येक निषेक में से गलेगे, परमाणु असंख्यात गुना गलेंगे, परंतु निषेक एक एक चला जाएगा। हाँ, जहां तक स्थिति कांडक घात आदि है तब बहुत सारी घटेगी, परंतु अदरवाइज एक एक निषेक तो गलेगा ही, ये बात चल रही है। यथाख्यात संयत, संयता संयत, अवधि दर्शनी कौमा लगाना, शुक्ल लेशा वाले, यानी शुक्ल लेशा वालों में भी ऐसा लिया है क्योंकि उनकी जो नई स्थिति बनती है वो कम बनती है और सत्ता वाले गलते चले जाते, उनमें उत्कृष्ट भी हमने अंत कोड़ा कोड़ी देखी थी। सम्यक दृष्टि, शायिक सम्यक दृष्टि, वेदक सम्यक दृष्टि, उपशम सम्यक दृष्टि, सासाधन सम्यक दृष्टि और सम्यक मिथ्या दृष्टि जीवों के जानना चाहिए। विशेषत भुजगार अनुयोग द्वार में भुजगार, अल्पतर और अवस्थित इन तीनों का विचार किया जाता है। इनके अवांतर अधिकार 13 है जो निम्न है। अवांतर अधिकार यानी उप अधिकार, एक मूल अधिकार जो भुजगार अधिकार नाम है उसके अवांतर यानी उसके इन एडिशन, उसके जो सब डिविजन्स है वो कितने हैं? 13 हैं। उन्होंने केवल 13 इतना ही कहा है, अभी विशेषार्थ में हमें वो बता रहे कौन कौन से है। पहला जो अभी चल रहा है समुत्कीर्तना, दूसरा है स्वामित्व यानी वो किसके होगा वो बताएंगे, फिर एक जीव की अपेक्षा काल, अंतर, स्वामित्व भी एक जीव की अपेक्षा होगा पहले में पहले, फिर नाना जीवों की अपेक्षा भंग विचय, भागा भाग, परिमाण, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अंतर, भाव और अल्प बहुत्व। इनमें से पहले यहां समुत्कीर्तना सु हुआ है, समुत्कीर्तना का विचार करते हैं। ओग से भुजगार स्थिति वाले, अल्पतर स्थिति वाले और अवस्थित स्थिति वाले जीव पाए जाते हैं, यानी सभी प्रकार के जीव होते हैं, बस इतनी बात। जो कर्म स्थिति से अधिक स्थिति को प्राप्त हो उसे भुजगार स्थिति वाला कहते हैं। ओ जो अधिक स्थिति से कम स्थिति को प्राप्त हो उसे अल्पतर स्थिति वाला कहते हैं। कर्म ने कम चाहिए ऐसी क्या बात, मैंने वही बात मैं सोच रही थी, कर्म स्थिति को कैसे लिया, कम स्थिति कर्म हुआ है वहां कम करना, हाँ विशेषार्थ में जो गलती है, जो कम स्थिति से ऊपर कहाँ लिखा है, हाँ जो कम स्थिति से लास्ट वर्ड कम स्थिति से अधिक स्थिति को प्राप्त हो उसे भुजगार स्थिति विभक्ति स्थिति वाला कहते हैं। जो अधिक स्थिति से कम स्थिति को प्राप्त हो उसे अल्पतर स्थिति वाला कहते हैं, और जिसकी पहले समय के समान दूसरे समय में स्थिति रहे उसे अवस्थित स्थिति वाला कहते हैं। वो कितने समय तक अवस्थित रहे वो बात नहीं, लगातार उतनी की उतनी रहे तो उसको हम अवस्थित स्थिति वाला कहेंगे। पहले हमने वो प्रकृति विभक्ति में ऐसा देखा, उतनी की उतनी प्रकृतियां हैं, इतना ही देखा था। अब यहां स्थितियों की बात है, निषेक कितने हैं उसकी बात चल रही है। इस प्रकार ओह की अपेक्षा इन तीनों प्रकार के जीवों का पाया जाना संभव है। सातों पृथ्वी के नारकी आदि प्रायः बहुत सी मार्गणाओं में इसी प्रकार की स्थिति है, अतः वहाँ भी ओघ के समान तीनों प्रकार की स्थिति वाले जीव जानना चाहिए, क्योंकि जिन मार्गणाओं में मिथ्या दर्शन संभव है, देखो बता दिया, वहां तीनों विभक्तियां बन सकती है। केवल आनंद से लेकर नव ग्रेविक तक के देव यानी मिथ्यात्व होते हुए भी किसको लेना छोड़ना इसमें से? हाँ, अकेले शुक्लेशा है, आनंद से लेकर नव ग्रेविक तक के देव, क्योंकि वो शुक्लेशा रहते हुए मिथ्या दृष्टि है, ये बात बताना चाहते हैं। तथा शुक्लेशा वाले अन्य भी इसके अपवाद हैं, यानी मिथ्या दर्शन जहां जहां है वहां तीनों ही होते हैं, एक्सेप्ट मिथ्या दर्शन के रहते हुए भी शुक्लेशा वालों को नहीं लेना, वैसे आनंद से लेकर नौवे ग्रहवे तक के जीवों को भी नहीं लेना, उनमें भी मिथ्या दर्शन तो है परंतु हाँ उनमें वो अल्पतर होगा, भुजगार नहीं होगा। किंतु आनतादि कल्पों में शुक्ल लेशा में और सम्यक दर्शन से संबंध रखने वाली शेष मार्गणाओं में, देखो आनतादि कल्पों में शुक्ल लेशा में, आनतादि कहे तो आनत से लेकर कहां तक लेना? हाँ, सर्वार्थ सिद्धि तक। अभी तो ऊपर नव ग्रेवेक तक जो बताया था वो मिथ्यात्व की अपेक्षा से बताया था, उसके अपवाद रूप बताया था। तो आनतादि कल्पों में शुक्ल लेशा में और सम्यक दर्शन से संबंध रखने वाली शेष मार्गणाओं में पहले समय में प्राप्त हुई स्थिति से द्वितीयादि समयों में स्थिति उत्तरोत्तर घटती चली जाती है। द्वितीय आदि दूसरे समय में उससे जितनी है उससे तीसरे समय में घटेगी, चौथे समय में घटेगी, उसको कहते उत्तरोत्तर घटती चली जाती है। अतः इनमें केवल एक अल्पतर स्थिति ही जाननी चाहिए। हमने तो वो लिस्ट देख के ही साधारण डिराइव किया था, ये सम्यक तो संबंधी सब मार्गणाएं हैं, इनमें तो यहाँ तो निश्चय गलते ही चले जाएंगे, वो तो अल्पतर ही होगा। इस प्रकार समुत्कीर्तना अनुगम समाप्त हुआ। अब कहते हैं स्वामित्व अनुगम, इसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकार का है, ओघ निर्देश और आदेश निर्देश। उनमें से ओघ की अपेक्षा मुनि की भुजगार और अवस्थित स्थिति विभक्ति किसके होती है? किसी भी मिथ्या दृष्टि जीव के होती है। अल्पतर स्थिति विभक्ति किसके होती है? किसी भी सम्यक दृष्टि या मिथ्या दृष्टि जीव के होती है। यानी अल्पतर तो सम्यक दृष्टि में भी पॉसिबल है, मिथ्या दृष्टि में भी पॉसिबल है। मिथ्या दृष्टि में अल्पतर कैसे होगी? हाँ, वहां भी होती है, और कहां होती है? एक इंद्रियों में सब हतसमुत्पत्ति करते चले जाते हैं, और यहां भी ऐसे भी है ना, उत्कृष्ट स्थिति बांधी थी तब तो उत्कृष्ट था, बाद में स्थिति कम बांध रहे तो घटती चली जाती है। इस तरह से विचार करना। इसी प्रकार सातों पृथ्वियों के नारकी सामान्य तिर्यंच, पंचेंद्रिय तिर्यंच, त्रिक मनुष्य त्रिक सामान्य देव, भवनवासियों से लेकर सहस्रार स्वर्ग तक के देव, पंचेंद्रिय पंचेंद्रिय पर्याप्त पामा देना, त्रस त्रस पर्याप्त, पांचों मनोयोगी, पांचों वचन योगी, काय योगी, औदारिक काय योगी, औदारिक मिश्र काय योगी, वैकृत काय योगी, वैकृत मिश्र काय योगी, कार्मण काय योगी, तीनों वेद वाले, क्रोधादि चारों कषाय वाले, असंयत चक्षु दर्शन वाले, अचक्षु दर्शन वाले, कृष्णादि पांच लेशा वाले, क्योंकि हमने उसको छोड़ा था, शुक्ल लेशा वालों में अल्पतर ही होता है अकेला, भव्य संगी आहारक और अनाहारक जीवों के जानना चाहिए। विशेष बात कल करेंगे। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो सो वाणी मस्तक ना। सदा देत हो। प्रेरणा में